ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदी बोलने वाले आगे आ जाओ। तो कहाँ, झारखंड वाला आ गया? क्या सुन रहा है, रेडियो सुन रहे हैं क्या? इधर आगे बैठो। लाइफ हिमर वाला क्या नाम, अद्भुत गिरधारी, क्या नाम, क्या नाम उसका, ये अद्भुत अद्भुते हैं। इधर आओ, सामने बैठो। अंग्रेजी किताब उधर ले जा पीछे। ए हरी बोल, गिव दैट इंग्लिश बुक बैक साइड, पीछे दे दो। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भागवत महापुराण से सातवां स्कंध अध्याय 3, हिरण्यकश्यपु की अमर बनने की योजना, श्लोक संख्या 15 और 16। न ददर्श प्रतिच्छन्न बल्कितृणकिच्चक पिपीलिका अभि पिपीलिका अभिराचा चीर्ण मेद मेद त्वंसमांस शोषितं तपन्तं तपसा लोकान् यथा अभ्र अपिहितं रविं विलक्ष्य विस्मितः प्राह हसन् तं हंसवाहन तपन्तं तपसा लोकान् तपन्तं तपसा लोकान् यथा व्रापिहितं रवि विलक्ष्य विस्मित प्राह हसन् हसंस्तं हंसवाहन तपन्तं तपसा लोकान् यथा व्रापिहितं रवि विलक्ष्य विस्मित प्राह हसंस्तं हंसवाहन तपन्तं तपसा लोकान् यथा भ्रापिहितं रवि विलक्ष्य विस्मित प्राह हसंस्तं हंसवाहन माता जी तपंतम, तपाया हुआ, तपसा अत्यधिक कठिन तपस्या से, लोकान तीनों लोकों को, यथा जिस तरह, अभ्र बादलों से, अपिहितम आच्छादित, रविम सूर्य को, विलक्ष्य देखकर, विस्मित आश्चर्यचकित, प्राह कहा, हसना हंसते हुए, तमा उसको, हंसवाहना हंसयान पर आसीन ब्रह्मा ने, इसके पहले का जो श्लोक है उसका भी वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। ना नहीं, ददर्श देखा, प्रतिच्छन्नम ढका हुआ, बल्मिका बाम्बी, बंबू होना चाहिए, एनीवे बांस, तृण घास, कीचकई तथा बांस के डंडे से, पिपीलिका भी चींटियों द्वारा, आचिरणम चारों ओर से खाया हुआ, मेदह जिसकी चर्बी, त्वचा चमड़ी, मांस मांस, शोणितम तथा रक्त, हंस यान पर चलने वाले ब्रह्मा जी पहले तो यह नहीं देख पाए कि हिरण्यकश्यपु है कहां, क्यों उसका शरीर बाम्बी घास तथा बांस के डंकों से, डंडों से ढक गया था। ये बाम्बी क्या होता है? अच्छा, दीपक का घर, और सरल हिंदी क्या होगा है? दीमक का घर बाम्बे। चूंकि हिरण्यकश्यपु दीर्घ काल से वहां था, अतएव चींटियां उसकी खाल, चर्बी, मांस तथा रक्त चट कर चुकी थी, तब ब्रह्मा जी तथा देवताओं ने उसे खोज निकाला। वह बादलों से आच्छादित सूर्य की भांति सारे संसार को अपनी तपस्या से तपा रहा था। आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी हंस पड़े और उसे इस प्रकार संबोधित करने लगे। तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। जीवात्मा अपनी त्वचा, मज्जा, अस्थि, रक्त इत्यादि के बिना केवल निजी शक्ति से जीवित रह सकता है, क्योंकि यह कहा गया है कि असंगो यम पुरुषम, जीव को भौतिक आवरण से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। हिरण्यकश्यपु ने अनेक वर्षे तक कठिन तपस्या की थी। दरअसल कहा जाता है कि उसने 100 दैवी वर्षों तक तपस्या की। चूंकि देवताओं का एक दिन हमारे 6 माह के बराबर होता है, अतएव यह अत्यंत दीर्घ समय था। वो अनुवाद करने वाला जोर से बोल रहा है, मुझे सुनाई पड़ रहा है। यू आर डूइंग इन माइक और व्हाट? प्रकृति के अपने ही नियमों से उसके शरीर को केचुओं, चिट्टियों तथा परजीवियों ने लगभग खा लिया था, और इसलिए ब्रह्मा भी पहले उसे नहीं देख पाए, किंतु बाद में ब्रह्मा जान गए कि हिरण्यकश्यपु कहां पर था, और वे उसकी तपस्या की अद्भुत शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस समय कोई भी यह निष्कर्ष निकलता कि हिरण्यकश्यपु मृत हो चुका था, क्योंकि उसका शरीर कई तरह से आच्छादित हो चुका था, लेकिन इस ब्रह्मांड के प्रधान जीव ब्रह्मा समझ गए कि हिरण्यकश्यपु जीवित है किंतु भौतिक तत्वों द्वारा आच्छादित हो गया है। यहां इस ओर भी ध्यान देना होगा कि यद्यपि हिरण्यकश्यपु ने 100 वर्षों तक लगातार यह तपस्या की थी, फिर भी वह दैत्य तथा राक्षस के रूप में ही विख्यात था। अगले श्लोकों से पता चल जाएगा कि इस प्रकार की कठिन तपस्या बड़े से बड़े साधु पुरुष भी नहीं कर सकते। तो फिर वह राक्षस था, दैत्य क्यों कहलाता था? इसका कारण यह था कि उसने जो भी किया वह सब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया था। उसका पुत्र प्रहलाद अभी केवल 5 वर्ष का था, अतः वह कर ही क्या सकता था। फिर भी नारद मुनि के उपदेशों के अनुसार केवल थोड़ी सी भक्ति करके प्रहलाद भगवान का इतना प्रिय बन गया कि वे उसे बचाने के लिए आए, जबकि हिरण्यकश्यपु अपनी सारी तपस्या के बावजूद भी मारा गया। भक्ति तथा सिद्धि की अनेक विधियों में यही अंतर है। जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कठिन तपस्या करता है वह समग्र संसार को डराता है, जबकि थोड़ी सी भक्ति करने वाला भक्त हर एक का मित्र होता है। सुहृदं सर्वभूतानां। चूंकि भगवान प्रत्येक जीव के शुभ चिंतक हैं, और चूंकि भक्त भगवान के गुण प्राप्त कर लेता है, अतएव भक्त भी भक्तिमय सेवा के द्वारा हर एक के कल्याण के लिए कर्म करता है। इस प्रकार यद्यपि हिरण्यकश्यपु ने ऐसी कठिन तपस्या की थी, किंतु वह दैत्य तथा राक्षस ही बना रहा, जबकि उसी दैत्य पिता के उत्पन्न पुत्र प्रहलाद महाराज अत्यंत सम्मानित भक्त बन गए, जिसे स्वयं परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। इसलिए भक्ति सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम कहलाती है, जिससे सूचित होता है कि भक्त समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है और वह अन्याभिलाषा शून्यम अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर दिव्य पद पर स्थित होता है। अद्भुत। तो कुर्सी पर बैठ जाओ, थोड़ा बैक तकलीफ है ना, कुर्सी पर बैठ, जोड़ मत दो। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्जिनिमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो श्लोक है देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी वहां पर आए जहां पर हिरण्यकश्यपु अति विकट तपस्या कर रहा था। ब्रह्मा जी जब आए तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, कुछ था ही नहीं। न ददर्श प्रतिच्छन्न, उन्होंने कुछ देखा नहीं, ब्रह्मा जी दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सब कुछ ढका हुआ था। घास पत्ते चिट्ठियों का घर का पहाड़ लग गया था, उसका हड्डी मांस मांस त्वचा सब चिट्ठियां खा गई थी, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन वह बहुत घनघोर तपस्या कर रहा था जिसे तीनों लोगों को तपा रहा था। और उदाहरण दिया गया है जिस प्रकार से, भले ही अभी देखिए ना सूर्य ढके हुए हैं बादलों से, लेकिन सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं। हम नहीं कह सकते हैं गिरात है, बादलों से ढके हुए हैं, वैसे ही वो ढका हुआ था, लेकिन तप के प्रताप से ब्रह्मा जी उसको समझ गए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य में तीन विषयों पर वार्ता किए हैं। एक बात है जीव का स्वरूप, दूसरा बात है असुर और भक्तों में भेद, और तीसरा बात है भक्ति करने की विधि या भक्ति की महिमा। तो हम लोग इन तीन बातों पर ही आज चर्चा करेंगे, और उसके लिए मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें कहूंगा जिसके लिए प्रभुपाद शिक्षामृत से, और भक्ति संबंधी बातें चैतन्य चरितामृत में जो रूप गोस्वामी को भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में जो शिक्षा दी है उससे वार्ता करेंगे। चलिए ये जीव का बात है। पहला तो जीव को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हिरण्यकश्यपु ऐसे तपस्या में लीन हो गया था, यदि कहा जाए कि वह सेल्फ रियलाइज हो गया था तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा। इस शरीर से अपने को अलग कर चुका था, जिस प्रकार से पितामह भीष्म या अन्य भक्त, पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हुए थे लेकिन उन्हें दुख की अनुभूति नहीं थी। श्रील प्रभुपाद जी जो वैद्यराज थे, प्रभुपाद जी का जो ट्रीटमेंट कर रहे थे वृंदावन में, उन्होंने कहा कि पता नहीं स्वामी जी कैसे अभी तक जी रहे हैं, इनके शरीर में इतना पीड़ा है कि सामान्यता कोई व्यक्ति जी नहीं सकता है, लेकिन स्वामी जी जी रहे हैं। यह प्रमाणित करता है कि प्रभुपाद जी शरीर से अलग थे। तो ये तपस्या भक्ति इन सब का चरम लक्ष्य जो है इस संसार में, पहला लक्ष्य है कि शरीर से अपने को अलग किया जाए और तब अपने वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। तपस्या इस सतयुग का समय था, तपस्या ही साधन था सतयुग में। कृते यध्याय तो विष्णु, सतयुग में तपस्या साधन था। अब उसी तपस्या से फर्स्ट स्टेज को हिरण्यकश्यप पास कर गया, यानी सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त कर गया। अब आसुरिक प्रवृत्ति होने के चलते उसका जो लक्ष्य था, वह उसका लक्ष्य था कि मैं ब्रह्मा का पद प्राप्त करता हूं, अमर बन जाऊं। यदि कोई भक्त होता, तपस्या किया होता जैसे अन्य भक्तों ने किया है, तो वे लोग भगवान का भक्ति चाहते, भगवत प्रेम चाहते, जिस प्रकार से पितामह भीष्म ने चाहा। अब हम लोग अपने को देखें, हम लोग कितना दूर हैं। दूसरा नहीं, हम स्वयं अपने हाथ से अपने शरीर में चींटी काटे, डेली काटते रहो है? और देखो कितना दर्द कर रहा है, कम कभी हो रहा है कि नहीं। तो एक आसक्ति है शारीरिक आसक्ति, बाहरी आसक्ति, इसको त्यागना पड़ेगा। दूसरी आसक्ति है मानसिक आसक्ति या सूक्ष्म देह की आसक्ति, उसको भी त्यागना पड़ेगा। हिरण्यकश्यपु उसको नहीं त्याग पाया था, प्रथम परत को पार कर गया था लेकिन उसे नहीं त्याग पाया था। और वह शरीर से परे हो गया था लेकिन मन में उसके बहुत बड़ा विचार था कि वो क्या क्या करना चाहता है। पीछे हम लोगों ने सुना कि वो चाहता था कि प्रकृति के सब नियम को बदल देगा, है जो लोग स्वर्ग में रहते हैं स्वर्ग में नहीं रहना चाहिए, उनको नरक में रहना चाहिए, स्वर्ग वाले सुखी हैं नरक वाले दुखी हैं, जो दुखी हैं उनको स्वर्ग में रखना चाहिए क्योंकि सुखी का जगह है। वो बोला कि वैष्णव पद को भी मैं खत्म कर दूंगा, ऐसे ऐसे सब उसके मन में वासना थी। तो मुक्त नहीं था, एक तरह से शरीर से मुक्त हो गया था लेकिन मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई थी। और भक्त लोग भक्ति कर करके उससे परे हो जाते। खैर उसको मैं बांध कहूंगा, मैं जीव का ये कर रहा था। तो हम लोगों को साधना भक्ति हम लोग कर रहे हैं, ये सामान्य एक असुर शारीरिक आसक्ति से परे हो गया था, शरीर के सुख दुख से परे हो गया था। हम लोगों को डेली मेडिटेट करना चाहिए कि हम लोग कितना परे हो रहे हैं, हम लोग कितना परे हो रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मा को इन सब वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, पंच भौतिक वस्तुओं का जिनसे शरीर बना है उसकी आवश्यकता नहीं है, आत्मा को मन बुद्धि अहंकार की आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा को आवश्यकता है तो भगवान का सेवा करने का, जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतना सब करने के बाद भी हिरण्यकश्यपु असुर ही कहलाया। जय श्री राधारास बिहारी जी, जय। वो असुर ही कहलाया और अंत में वह मारा गया, अंत उसकी गति यह हुई। अब दूसरा जो बात है कि भक्त और असुर में अंतर क्या होता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहां पर कि अगले श्लोकों से पता चल जाएगा कि इस प्रकार कठिन तपस्या बड़े से बड़े साधु पुरुष भी नहीं कर सकते, तो फिर वह राक्षस तथा दैत्य क्यों कहलाता। इसका कारण यह था कि उसने जो भी किया वह सब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया था। उसका पुत्र अभी केवल 5 वर्ष का था, अतः वह कर ही क्या सकता था। फिर भी नारद मुनि के उपदेश के अनुसार केवल थोड़ी सी भक्ति करके प्रहलाद भगवान का इतना प्रिय बन गया कि वे उसे बचाने के लिए आए, जबकि हिरण्यकश्यपु अपनी सारी तपस्या के बावजूद मारा गया। तो अंतर भक्त और असुर में है कि असुर लोग जो भी काम करते हैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, जहां के भक्त लोग हैं जो भी काम करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। और भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, जैसे आप प्रसादाद भगवत प्रसादो, जब गुरु और वैष्णव को हम लोग प्रसन्न करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं लास्ट टाइम भी कथा कहा था तो बताया था कि हम लोगों के समावेश में भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। उद्धव माधव जब सोएगा तो नहीं भगवान प्रसन्न होंगे, कुर्सी पर बैठे हो आराम से सुनो, आराम से कथा सुनो। हम लोगों के परिवेश में देखा जाए सिद्धांत वही है लेकिन प्रभुपाद जी एक विधि व्यवस्था बनाए हैं, और विधि व्यवस्था है अथॉरिटी स्ट्रक्चर। हम अपने अथॉरिटी को प्रसन्न करेंगे, इस प्रकार से गुरु और परंपरा प्रसन्न होगी और इस प्रकार से भगवान प्रसन्न होंगे। भक्ति सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। जो आश्रित प्रवृत्ति वाले होते हैं वो अकेला रहना चाहते हैं, उनमें डर रहता है, लेकिन जो भक्त होते हैं वो संग में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, साधु संग, संग में रहते हैं। तो हम लोग स्वयं टेस्ट कर सकते हैं कि मुझमें आश्रित प्रवृत्ति ज्यादा है कि दैवी प्रवृत्ति ज्यादा है। जिसमें दैवी प्रवृत्ति ज्यादा होगी वो भक्तों का संग चाहेगा, और जिसमें आश्रित प्रवृत्ति ज्यादा होगी वो एकांत, अकेला रहना चाहेगा, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, कोई मेरे पास ना आए, क्योंकि असुरों में हमेशा भय बना रहता है, जहां के भक्तों में कोई भय नहीं होता है। और जो भक्त बन जाता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। तो असुर में स्वार्थ होता है, निज इंद्रिय तृप्ति तार नाम काम, कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। तो असुर लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, जहां के भक्त लोग प्रेम की प्राप्ति में, यानी कृष्ण के इंद्रियों को तृप्त करने में लगे रहते हैं। यही असुरों में और भक्तों में अंतर है। मैं लास्ट टाइम वो उपदेश उपाख्यान से कथा बताया था, असुर का परिभाषा और देवताओं का, कि असुर लोग स्वयं अपना पेट भी नहीं भर पाए, कि स्वार्थ होता है ना, और देवताओं में संग होता है, परमार्थ होता है, वो दूसरों के लिए करना चाहते हैं, अपने लिए नहीं। तो जो भक्त होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, महान होता है। कल ही मैं काउंसिल बता रहा था कि एक आजकल व्हाट्सएप पर बहुत कुछ आता है, तो एक मैसेज आया हुआ है, अच्छा लगा, मैं सोचा बता दूं आप लोगों में भी। वो कोई अपना बुद्धि लगा करके किया था, लेकिन बात सही कहा था कि आजकल जो पढ़ाई होती है और जो फर्स्ट रैंकर होता है वो एमटेक करता है, बीटेक करता है, एमबीबीएस करता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, क्या क्या बनता है, सबसे बड़ा बनता है फर्स्ट रैंकर। जो सेकेंड रैंकर होता है वो एमबीए करता है। तो जो फर्स्ट रैंकर है उनको कौन कंट्रोल करता है? सेकेंड रैंकर, एमबीए बिजनेस वाले, वो इंप्लॉय करते हैं। और जो थर्ड रैंकर है या मैट्रिक फेल हो गए हैं वो पॉलिटिशियन बनते हैं, ये दोनों को कंट्रोल करते हैं। और जो पढ़ा लिखा नहीं हो, सिंपल हो, वो साधु बनता है, वो सबको कंट्रोल करता है कि नहीं? साधु बन जाओ सबको। तो साधु बनना जरूरी है, साधु बनोगे तो सब आपके चरण में आएंगे। ये वस्त्र धारण करना अति उत्तम है, लेकिन वस्त्र मात्र धारण करने से कोई साधु नहीं बन सकता है। साधु बनने के लिए भक्ति करना नितांत आवश्यक है। अब भक्ति क्या है इसके विषय में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतलाए हैं कि रणकश्यप छोटे बालक थे, वो तो बड़ा तपस्या कर नहीं सकते थे, तो बालक वाला काम किए। बालक वाला काम मतलब भक्ति। बालक जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं बाप मां पर, और भक्त होते हैं वही भगवान पर डिपेंडेंट होते हैं, गुरु पर डिपेंडेंट होते हैं, साधुओं पर डिपेंडेंट होते हैं। तो भक्त बनना सबसे सेफ पोजीशन है। जो व्यक्ति गुस्सा करता है, बड़े लोगों को भले मारेगा, गाली देगा, लेकिन छोटा बालक हो तो उसको नहीं मारेगा, उसे गुस्सा नहीं करेगा, डांट सकता है। वैसे ही बड़े लोग कभी कभी कुछ गलती कर देते हैं तो लोग मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और साधु से गलती हो जाती कह रहे महाराज आप साधु का ऐसा करते हैं छोड़ देते हैं। मैं उदाहरण देता हूं ट्रैफिक पुलिस वाला, वो ट्रैफिक रेड लाइट में गाड़ी लेकर जाओ तो बड़े लोगों का बड़े से बड़े लोग जब रेड लाइट तोड़ेंगे तो पसीना चुन लेगा पुलिस वाला सामने पड़ गया तो ये गलती हो गया। और अपने साधु लोग विष्णु अपना है चला गया तो कह रहे महाराज आप साधु का ऐसा गलती करते हैं, तो कभी विष्णु का प्रसाद ले लो भाई कोई बात नहीं। तो साधु मतलब बालक के समान। प्रभुपाद जी तात्पर्य बतलाए हैं कि जो बालक होते हैं उनको मान और अपमान का कोई अंतर नहीं होता है, उनमें मान अपमान का कोई भेद नहीं होता है। बालक को कोई खूब प्रशंसा करे तो हंसेगा और कोई खूब डांटे तो भी हंसेगा, वो छोटा बच्चा है ना उसको कोई मतलब नहीं है। वैसे ही साधु लोग कोई उनका सम्मान करे तो भी राम राम और गाली दे तो भी राम राम। अमानिना मान देना, ठीक बालक के समान। ये देखा जाए कंपेरिजन किया जाए तो बालकों की परिस्थिति या साधुओं की परिस्थिति दोनों ठीक एक समान। तो सेफ साइड है साधु बनना, भक्त बनना सेफेस्ट साइड है। और कैसे भक्त बना जाए, श्रीपाद रूप गोस्वामी भक्त रसामी सिंधु में भक्ति का उपाख्यान करते हुए बतलाते हैं, सर्वोपाधिर विनुर्मुक्त तत्प्रेण निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति क्या है कि समस्त प्रकार के उपाधियों से मुक्त हो जाना। ये छोटे बालक हैं उनमें उपाधियां नहीं होती है, निरुपाधि होते हैं। छोटे बालक कहो कि मैं तुम्हें कंपनी का चेयरमैन बना रहा हूं, क्या उसे मतलब है, वो जानता भी नहीं। तो जब तक से एक सो कॉल्ड पोजीशन है, अटैचमेंट है, उससे हम मुक्त नहीं होएंगे, निकृष्ट रूप से मुक्त नहीं होएंगे, तब तक से भक्ति नहीं कर सकते। जीरो पर आना पड़ेगा। मेटेरियल क्वालिफिकेशन, सौंदर्य, धन, ये सब भक्ति में बाधक होते हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमाद मदपुमान, ये सब मद है, लोगों को पागल कर देता है। उच्च कुल में जन्म, मैं ब्राह्मण हूं, जब हमें याद है जब भक्त डायरेक्टर जब भक्त बनाते थे हम लोग शुरू में, तो उड़ीसा से भक्त आते थे उनके पास जनेऊ होता था और मैं उनका जनेऊ कटवा लेता था, कहा पाला उपाधि छोड़ो। सब लोग बेचारे आसानी से काट देते थे, लेकिन हमारा एक भक्त था प्रमोद पंडा है पंचरत्न दास, वो नहीं काट रहा था, मुझसे आर्गुमेंट कर रहा था उसे कोने में। मैं कहा कि नहीं ये खराब है, यहां पर सब एक समान रहना चाहिए है? तो मैं एक कोट श्लोक किया था, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, और सरेंडर कर गया बेचारा। और देखो अभी भी कहीं पर किसी कोने में है, अभी भी लगा हुआ है। तो ये अभिमान रहेगा, मैं इंटेक हुआ हूं, बीटेक किया हूं, मैं पीएचडी हूं, जब ये अभिमान रहेगा तो आगे बढ़ना मुश्किल है। ये सब जीरो करो, छोड़ो। जब स्लेट साफ करोगे तो कुछ लिख सकते हो, उस पर कुछ लिखा रहेगा तो क्या लिखोगे। जीरो करो। सर्वो उपा जब नए भक्त बनते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं, पैंट शर्ट भी मैं ले लेता था उन लोगों का, नंगा नहीं छोड़ता था, धोती कुर्ता देते थे, घड़ी था, पैसा था, सब जमा करते थे ट्रेजरी में, कुछ भी उनके पास नहीं। सरेंडर करो मतलब सरेंडर करो फूले, जब सब लेकर के ही चलोगे तो डूबोगे नहीं तो कहां जाओगे। तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परेण निर्मलम, निर्मलता तब आएगी जब इन उपाधियों से हम मुक्त हो जाएंगे, और जब उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे निर्मल हो जाएंगे तभी हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते, भक्ति करना प्रारंभ करेंगे। भक्ति के विषय में बताया गया है कि भक्ति कैसे होनी चाहिए। रूप गोस्वामी आए कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद अनावृत अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, आप पूछो क्या कर रहे हो मंदिर में, भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का पहचान क्या है? किसी वस्तु का पहचान होता है उसके लक्षण से। तो भक्ति कोई कर रहा है कि नहीं इसका लक्षण कुछ होना चाहिए जिसे हम पहचान कर सके। तो यह जो श्लोक है वो भक्ति का लक्षण बतलाता है। इसमें स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण दो लक्षण है। इस श्लोक में दो स्वरूप लक्षण हैं और दो तटस्थ लक्षण है। भक्ति मतलब कृष्ण के प्रति किया गया कार्य, कृष्ण के लिए किया गया कार्य जो है वो कहलाता है भक्ति। हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, कृष्ण का सेवा भक्ति कहलाता है। अब कैसे पहचानेंगे? तो स्वरूप लक्षण है कि अनुकूलेना और अनुशीलनम, ये है स्वरूप लक्षण भक्ति का, कि भक्ति जो है वो अनुकूल होना चाहिए। अपने मन से किया गया भक्ति भक्ति नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं स्वामी जी अपने अनुसार भक्ति कर लेते हैं, वो भक्ति नहीं हुआ। भक्ति का मतलब होता है अनुकूलेन कृष्णा, अनुकूल हो। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कोई कहता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, पत्नी बोलती है अपने पति को मैं बहुत प्यार करती हूं, तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, और पति को प्यास लगा है और उसको एक गिलास दूध लेकर जाए, दूध विटामिन डी है, दूध पियो है, दूध विटामिन है पियो, तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब यदि पति को प्यास लगा तो पानी दो। तो ये जरूरी है जानना कि भगवान को क्या पसंद है, उनके अनुसार उनकी इच्छा के अनुसार किया गया भक्ति भक्ति से। अर्जुन भगवान की इच्छा थी कि महाभारत युद्ध हो, सब लोग मारे जाएं, और अर्जुन नहीं चाहते हुए भी किए, और यही है भक्ति। हम बहुत कुछ नहीं चाहते हैं लेकिन चूंकि भक्ति करना चाहते हैं इसलिए हम करते हैं। तो ये है स्वरूप लक्षण कि गुरु और कृष्ण क्या चाहते हैं वह मैं करूं, शास्त्र क्या कहता है वही मैं करूं, प्रभुपाद जी ने क्या कहा है वही मैं करूं, और यही है भक्ति का स्वरूप लक्षण अनुकूलेना। जब अनुकूल भक्ति करेंगे तो अनुशीलनम यानी भगवान गुरु वैष्णव सब लोग उसका अनुमोदन करेंगे। यदि आप भजन कर रहे हो और आपका अथॉरिटी आपके पीठ पर कहता वाह वेरी गुड वेरी गुड है, तो समझना कि हमारा भक्ति ठीक चल रहा है, कृष्ण प्रसन्न है, वैष्णव लोग प्रसन्न है तो ठीक है, एक गुण है, एक लक्षण है अनुशीलनम। तो एक स्वरूप लक्षण है भक्ति का, और तटस्थ लक्षण है अन्याभिलाषिता शून्य, कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। यदि मंगला आरती आना है, क्लास गुरु पूजा आना है, संध्या आरती आना है, तो कोई अभिलाषा नहीं, क्योंकि मंगला आरती आना, क्लास गुरु पूजा, संध्या आरती इत्यादि आना ये भक्ति का स्वरूप लक्षण है। और सब जो है अभिलाषा से किया गया कार्य वह तटस्थ लक्षण है। तो अभिलाषा शून्य होना चाहिए, अन्य अभिलाषता शून्य, और उसको भी डिवाइड किया, बताया गया ज्ञान कर्म अनावृत, जो ज्ञान इत्यादि से कवर न हो भक्ति, कोई लालसा न, कोई कामना न हो, ये सबके लिए अप्लाइड है। जो व्यक्ति भजन करता है उसके लिए, अब भजन करने वालों में, भक्तों में तीन कैटेगरी है। एक कहलाता है साधन भक्ति, एक कहलाता है भाव भक्ति, और एक कहलाता है प्रेम भक्ति। साधन भक्ति जब हम करेंगे तो हम रति के प्लेटफार्म पर आएंगे, और जब रति के प्लेटफार्म पर आएंगे यानी विश्वास के प्लेटफार्म पर आएंगे, निश्चयता हो जाएगी, अब कहां जाएंगे, अब तो यहीं रहना, भजन करना ही है, वहां से भाव भक्ति शुरू होता है, और भाव भक्ति की परिपक्वता के बाद प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। तो भक्ति के कैरेक्टरिस्टिक में श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति कैसा होता है, क्लेशाग्नि शुभदा सुदुर्लभा मोक्ष लघुता कृता सांद्रानंद विशेषत श्री कृष्ण आकर्षणी च। ए भक्ति के छह गुण बताए गए हैं, छह कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं, स्वभाव स्वरूप। तो क्लेशाग्नि और जो सुविधा है, क्लेशाग्नि मतलब क्लेश खत्म हो जाता है, विभिन्न प्रकार का ट्रबल होता है, दुख होता है, घर में थे तकलीफ था, बाल बच्चे परेशान करते थे, बाप मां परेशान करते थे, कर्जा था, ये था, वो था, बहुत टेंशन था, जब ही हरे कृष्ण मंदिर ज्वाइन किया, हरे कृष्ण जप करना शुरू किया, खत्म हो गया क्लेशाग्नि। इसके बावजूद दैहिक दैविक भौतिक ताप वो भी, अरे मैं ग्रॉस उदाहरण दे रहा हूं, जो बाहर वाले हैं उनको टेंशन रहता है जब टमाटर और आलू का भाव बढ़ जाता है, हम लोगों को भी टेंशन रहता है, किस ब्रह्मचारी को टेंशन रहता है जब आलू और टमाटर का भाव बढ़ जाता है, तो 9 बजे फर्स्ट क्लास से गरम गरम प्रसाद मिलता है, कितने लोगों को मालूम हो कि आलू का भाव क्या है, बताओ तो, एक आदमी बताओ, चलो रास बिहारी ब्यूरो वाला, क्या नाम, टमाटर का भाव क्या है आज, तो मालूम है नहीं, तो क्लेशाग्नि, एक तो टेंशन दूर हुआ ना, हैं भजन करने से, सिंपल टेंशन मैं कह रहा हूं। अब यहां से चर्च गेट जाना होगा, बाहर के लोग ठका ठक वो ट्रेन में भर करके जाएंगे, अपना भगत हो तो फोन करेगा 110 एक गाड़ी भेज दो भाई वहां से, हालांकि वो भी सही नहीं है, लेकिन नहीं वे, यदि भक्त जाएंगे भी ट्रेन में, हम लोग जाते थे तो वहां भी कीर्तन करते जाते थे, आनंद ही आनंद था, क्लेशाग्नि।
और शुभदा। भक्ति मंगलमयी है, भजन करना अच्छा चीज है। स्पेशली आजकल का दिन है, अब चातुर्मास आ रहा है, हम सब लोगों को कुछ प्रोग्राम करना चाहिए। चातुर्मास में हम क्या करें, सब लोग ऋषि लोग एक जगह बैठ कर करके और अपना साधन भजन करते थे। प्रभुपाद जी हम लोगों को बतलाए हैं क्या करना चाहिए। यदि वर्षा न हो रहा हो, कोई बाधा न हो, तो अपने अपने सेवा में कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओ, हरिनाम करने जाओ, प्रचार करने जाओ। लेकिन खूब यदि बाधा हो, कैट्स एंड डॉग जैसा वर्षा, मूसलाधार वर्षा हो रहा, बम्बई में पानी भर गया हो, कोई चारा न हो, तो देखिए बरसात का दिन दो काम के लिए बड़ा आनंद देता है। कौन कौन जानता है? सुंदरानंद ठाकुर, बरसात के दिन में दो काम करने में आनंद आता है, एक सोने में और एक भोजन करने में। भोजन नहीं, भजन। भजन करने में और सोने में, दो में आनंद आता है। अब देखना है कि हम कौन सा आनंद लेना चाहते हैं, भजन करने का कि सोने का। यदि बाहर नहीं गए तो आश्रम में सोने के बजाय संकल्प करें चार महीना में हम चतन चरतामृत पूरा अध्ययन कर लेंगे, या भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ लेंगे पूरा। सोना नहीं चाहिए। एक बार आश्रम से बाहर निकला तो बाहर निकलना चाहिए। गृहमेधियों के समान वो अपने बेड को और आश्रम को, मुझे याद है कि पहले ए बी सी डी डी बिल्डिंग था, राइट, ई बिल्डिंग और बीबीटी, लास्ट बिल्डिंग और बीबीटी, डी बिल्डिंग। फर्स्ट फ्लोर पर गिरा स्वामी श्रीधर स्वामी, मैं था, हरिदास प्रभु थे, तो गिरा स्वामी का रूम था, बाद में मेरा रूम था और हम दो तीन लोग थे। तो हम एक दिन का बात है कि हम मंदिर सफाई पर करा करके हम लोग गए थे, और श्री भजन प्रभु थे, श्रीकांत प्रभु थे, धृतराष्ट्र, हम लोग भजन कर रहे थे। तो गिरा स्वामी प्रायः जाने से पहले गायत्री जप करते थे, बाहर जाते थे डेली, और कभी कभी आते थे आश्रम में स्नान करने, अदरवाइज यूजुअली फर्स्ट फ्लोर पर यहां स्नान कर लेते थे बाथरूम में, आप लोगों का जो बाथरूम, कभी कभी आश्रम आते थे। उस दिन आ गए आश्रम में, हम लोग कीर्तन कर रहे थे, दरवाजा खोले तो हमने सोचा कि महाराज बड़े खुश होंगे, कम से कम कीर्तन तो कर रहे हैं। महाराज देखकर बिगड़ गए, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, यू हैव नो सर्विस। आई थॉट माय गुडनेस, हम तो कीर्तन कर रहे हैं, सर स्टॉप इट एंड गो एंड डू योर सर्विस। दैट वाज द मूड, हम कीर्तन कर रहे थे उसके लिए भी, बिकॉज सर्विस, सेवन मुखे ही जिह्वा दऊ। और बात महाराज ने बिल्कुल सही कहा, हम लोगों का सेवा भी था उस समय, श्रीकांत प्रभु का सेवा था, स्वीट डिपार्टमेंट में स्वीट बनाना है, श्री भजन का समय था उस समय भक्तों को करताल और मृदंग सिखाना, और मेरा सेवा था उस समय यह देखना कि आश्रम सफाई हुआ है कि नहीं, भक्त लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, भक्त लोग क्या कर रहे हैं। एज ए टेम्पल कमांडर, तो वो एक दिन था, ओल्ड एज। तो मैं कह रहा था कि साधन भक्ति से क्लेशाग्नि और शुभदा, ये कल्याणकारी है, क्लेश खत्म हो जाता है, कोई दुख नहीं, टेंशन फ्री। मैं कहता हूं ना, माया के दास सदा उदास और कृष्ण के दास बिंदास, तो साधन भक्त बनते हैं बिंदास हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं। और शुभदा, उसके बाद जो भाव भक्ति है वह सुदुर्लभा और मोक्ष लघुता कृता है। भाव भक्ति इतना आसान नहीं है, सुदुर्लभा, बहुत कठिन है। भाव भक्ति के प्लेटफार्म पर जो आज आता है उसका एक दो उसमें रहता है, क्लेशाग्नि और सुविधा। ये नहीं कि भाव भक्ति पर आ गया तो उसको बहुत तकलीफ होगा, नहीं, वो दोनों ऑटोमेटिकली रहता है। प्लस एक्स्ट्रा है सुदुर्लभा और मोक्ष लघुता कृता। जो भाव भक्ति पर रहता है उसे मोक्ष की कामना नहीं होती है। पांच प्रकार की मुक्ति है, उसमें से भाव भक्ति वाला जो भक्त है, भाव भक्त, वो मोक्ष नहीं चाहता है, केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है। और अंत में प्रेम भक्ति, जिस जो प्रेम भक्ति के साधक हैं, ये तीनों साधक हैं, साधना भक्ति के, भाव भक्ति के और प्रेम भक्ति के। तो प्रेम भक्ति के जो साधक हैं उनके पास भी क्लेश लघुता कृता, क्लेश क्लेशाग्नि और शुभधा दोनों तो रहता ही है, उसके बाद सुदुर्लभा मोक्ष लघुता कृता वो भी रहता है, और दो और बढ़ जाता है कि उनके भक्ति से उन्हें सांद्रानंद विशेषता, विशेष आनंद, ब्रह्मानंद को आनंद कहा जाता है, लेकिन उससे भी विशेष आनंद की प्राप्ति, और वैसे भक्तों के भक्ति से कृष्ण आकृष्ट होते हैं। कृष्ण को आकृष्ट करने का तरीका है तो वह है प्रेमा भक्ति। नाउ ये स्टेज है, जिस प्रकार से प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज अलग स्टेज होते हैं। हम लोग अभी प्राइमरी स्कूल में हैं, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल। हम लोग साधक भक्त हैं, हम लोग अभी ये स्ट्रगल कर रहे हैं। क्लेशाग्नि और शुभदा ये दो हैं लेकिन प्राप्त नहीं हो रहा है। कहते जो साधक भक्त हो जाता है उन्हें क्लेश नहीं होता है, लेकिन हम लोगों में कितना क्लेश है, हम लोगों में कितना तकलीफ है, मेंटल फिजिकल कितना दुख है। इसका मतलब क्या है, भक्ति में तकलीफ है, साधना साधना में तकलीफ नहीं है, साधक में तकलीफ है। हम लोग साधना नहीं कर पाते हैं, यह तकलीफ है। एनीवे, मैं सोचा था कि साधना भक्ति के विषय में रूप शिक्षा से पढ़ूंगा, लेकिन अपना समय अपने अनुसार चलता है, तो मैं आप लोग पढ़ लेना। चेतन चरितामृत में चेतन महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया है। चूंकि हम साधक भक्त हैं तो साधना भक्ति के विषय में मैं जरूर कुछ पढ़ना चाहूंगा। प्रभुपाद जी जो कहे हैं, हमारे सोसाइटी के आचार्य प्रभुपाद जी हैं, और सोसाइटी के नियम कानून को कोई चेंज नहीं कर सकता है, जो प्रभुपाद जी दे कर गए हैं, बता कर गए हैं। तो एक कुछ चीज हैं जिसके लिए मैनेजमेंट बड़ा सीरियस है, क्योंकि एक थम रूल है, मैनेजमेंट का पूरा सोसाइटी सीरियस है। एक थम रूल है कि जो थर्ड डिसेंडेंट होते हैं वो डायनेस्टी को खत्म कर देते हैं, थर्ड डिसेंडेंट। जैसे उदाहरण के लिए बाप दादा खूब कमाए, खूब परिश्रम किए, उनके पांच बेटे थे, तो भाइयों ने देखा कि अरे पिता इतना परिश्रम कर रहे हैं, हम भी काम करेंगे, तो ये सेकेंड जेनरेशन हुआ। और थर्ड जेनरेशन जो पांच बेटों के पांच पांच बेटे हुए, बोले इतना पैसा है क्या करेंगे, अब काम करने की कोई जरूरत नहीं है, है? काम करना बंद, वो बंद है, पैसा है, बाप माने इतना कमा कर रखा है काहे को, चलो काम करना बंद। तब क्या होगा, झगड़ा होगा और बिखर जाएगा। तो हम लोग उसी प्लेटफार्म पर हैं, आप लोग एक तरह से मैनेजमेंट दिखा जाए तो ये थर्ड जनरेशन है। हमें याद है कि 1984 में जब मैं वाइस प्रेसिडेंट बना, उस समय मंदिर में 50,000 रुपया कर्जा था, 50,000 रुपया कर्जा था, और ये सिनेरियो चला 85 तक। अभी बेचारा कपड़िया जीवित है, मैंने कहा कि अब 10,000 रुपया प्रत्येक महीना साइड करना शुरू करो तभी होगा। 87 में जब कीर्तनानंद महाराज छोड़ दिए, सब उनके चेहरे भाग गए यहां से, We lost almost 50 devotees in one stop. Mandir boom went down.
6 to 8 महीना केवल खिचड़ी खाए.
Almost a year. तब धीरे-धीरे पिकअप करना शुरू किया.
फिर उसके बाद हम लोगों ने प्लानिंग किया कि टेनेंट लोगों को खरीद दिया जाए. बड़े परेशान करते थे, आप लोग तो आराम से बैठे हो,
भक्तों के पैर को चूहा भी काटे यहां पर हरे कृष्ण लैंड में.
हम लोग गाली सुनते थे टेनेंट लोगों से, वो अंडा फेंकते थे, क्रिकेट खेलते थे, गाड़ियों का कार तोड़ते थे कांच. डेली पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, पुलिस हमेशा अड्डा मारती थी. अभी पुलिस है लेकिन सोती है, अभी तो कोई बात नहीं है, लेकिन उन दिनों पकड़ कर ले जाते थे हम लोगों को. पुलिस स्टेशन बैठाते सांता क्रूज, अभी तो जुहू नहीं था, सांता क्रूज पुलिस स्टेशन बैठाते थे आधा घंटा एक घंटा. हम लोगों ने टेनेंट खरीदा, चलो वो खरीद करके सेकेंड फेज बना दिया. अब राधारास बिहारी कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है, जो हम लोगों का लक्ष्य था पूरा हो गया. लेकिन ये सोचने का समय है, ये ट्रस्ट है, प्रभुपाद जी का सोसाइटी है. सो वी शुड नॉट मिसयूज एनीथिंग. और कब होगा, जब हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे. मैं उदाहरण देता हूं कि टाटा और बिरला का, बिरला का ट्रस्ट है, बिरला इज वन ट्रस्ट, सॉरी टाटा इज ए ट्रस्ट. जो भी टाटा में काम करता है उसको सैलरी मिलता है, जैसे चेयरमैन हो जो कोई हो, उसका धन अपना धन नहीं होता है. लेकिन बिरला में ट्रस्ट नहीं था, सब बिरला डिवाइड हो गया. बिरला का नाम बहुत बड़ा था, केवल नाम रह गया है, कुछ है नहीं. तो इंडिविजुअली कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन कलेक्टिवली तब बड़ा होंगे जब हमारा आश्रय एक हो. और प्रभुपाद जी इस्कान के फाउंडर चार्ज हैं, इस्कान एक ट्रस्ट है. तो इस बात को हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए. और ये तब नहीं भूल, कब नहीं भूलेंगे, जब हम साधना भक्ति को पक्का रखेंगे. एक बात मुझे और कहना था कि पहले 10 टेंपल प्रेसिडेंट नहीं थे मंदिर में, एक प्रेसिडेंट थे. आज भी नाम के लिए एक प्रेसिडेंट है लेकिन अलग हो गया है. पहले जितने डिवोटी थे सब टेंपल प्रेसिडेंट के अंदर थे. दे वेर अंडर टेंपल प्रेसिडेंट भाया हिज मीडिया ऑफ टेंपल कमांडर. सेवा करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट जाते थे. डिपार्टमेंट हेड केवल सेवा का इंचार्ज था, और साधना का इंचार्ज, यहां तक कि धोती कुर्ता टूथब्रश टूथपेस्ट देने का इंचार्ज टेंपल कमांडर था. एवरीबडी हैड टू गो टू सेंट्रल स्टोर एंड गेट फ्रॉम देयर. दैट वाज वेरी स्वीट डेज. सबके पास वही निर्मा साधु पाउडर लाते थे, नहीं तो वो लाइफ बॉय सोप सबके लिए. लास्ट सोप मुझे याद है लिरिल, कोई सोप था ना, लिरिल हम लाए थे, और वही मैं काट रहा था. टेंपल कमांडर कौन था, राधा कृष्ण था पता नहीं. आई गॉट इन हिज केस, इतना महंगा साबुन क्यों ला दिया. अभी आ तो देखो पता नहीं, सब अलग अलग अपना डिपार्टमेंट है, कौन कौन या यूज करता है. दिस इज नॉट गुड. इसीलिए साधना भक्ति लैक हो रही है. पहले मूड था, संध्या आरती हुआ सब भाग कराते थे. अभी संध्या आरती कंप्यूटर चलाते हैं यार, क्या कंप्यूटर में हुआ है. इम्पर्सनल बनने की क्या जरूरत है. क्लोज योर ऑफिस 5 o'clock, कम फॉर इवनिंग प्रोग्राम. तो मैं एक ही लेटर पढ़ूंगा. सो यू फॉलो दोज प्रिंसिपल 10 offenses एज वेल एज द 4 restrictive प्रिंसिपल एंड द अदर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर इनिशिएटेड डिवोटीज मस्ट अटेंड मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रोग्राम. मस्ट शुड नॉट एक्सटेंसिवली मिक्स विथ नॉन डिवोटी. शुड नॉट ईट फूड कुक्ड बाय ए नॉन डिवोटी. शुड नॉट वेस्ट टाइम in idle talk. Should not become engaged in frivolous sports like cricket and all those things. Should always chant and sing the Lord's holy name. Chanting as initiated by Sri Chaitanya Mahaprabhu is the only means for a spiritual realization in this age of
dissension. So chant at least 16 rounds daily, and for other help you ask the assistant from your elderly god brothers. Prabhupada to all the devotees, he wrote in 1968. Yesterday also in class, Prabhupada towards the end of the class, he said, we should chant Hare Krishna Maha Mantra as much as possible and be liberated. These are the last closing word of Prabhupada. So please, again I am appealing all of you. Like last night, such a nice Sandhya Aarti. If you do like this, I will become 10 to 15 years younger. I am 64. I am 58 now, but I can become 10 years more younger. I will become 48. So please, I beg all of you, I request, encourage all of you, please chant and dance. यदि हम साथ में नाचे गाएंगे तो मैं फायदा बता रहा हूं क्या क्या है. एक तो हम लोगों का संग वह साधु संग कहते हैं. दूसरा, किसी में अभिमान नहीं होगा, त्रणादपि हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तीसरा, कि जो अपने को खूब बड़ा समझता है, कभी मतलब नए भक्त भी अपने को बड़ा समझते हैं, बात नहीं करते हैं, किसी को प्रणाम भी नहीं करते हैं, हरे किसी में नहीं बोलते हैं, स्पेशल बने रहते हैं. कीर्तन में सबको केवल आनंद कंद सब. तो बहुत से फायदे हैं नाचने और गाने में. शरीर के लिए भी अच्छा है. चैतन्य महाप्रभु यही करते थे, नाचते थे और गाते थे. भक्त संग लैया करे नाम संकीर्तन, नाचे गाए करे नाम संकीर्तन. नाचना गाना और नाम संकीर्तन. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम. नाम संकीर्तन में आनंद आता है. शरीर के लिए भी पुष्टिदायक है, बीमारियां नहीं हो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू ऑल विल बी हेल्दी. हम लोग नाचते थे तो पसीना आता था एक लोटा तक. नरसिंह चैतन्य प्रभु और हम इसको छूते थे जम कर करके, उतना जा नहीं पाते थे, प्रयास करते थे. सो इट्स वेरी नाइस. प्रभुपाद जी ने यूनिक गिफ्ट दिया है हम लोगों को, नाचना गाना. चैतन्य महाप्रभु का यूनिक, अन्य कहीं नहीं प्राप्त होगा. कल इतना अच्छा लग रहा था जब भक्त लोग नाच रहे थे, वैकुंठ उतर करके आ गया था, सब बाहर वाले देख रहे थे. तो टेम्पल इज मेंटेनिंग, वी हैव वेरी नाइस टेम्पल पर्सन बजरी प्रभु, ही टेकिंग केयर ऑफ एवरीबॉडी. नाउ यू गॉट एवरीथिंग, सब कुछ आपके पास है. आप लोग सब छोड़ो और जिस काम के लिए साधु बनो हो वो करो, और सब काम सेकेंडरी है. यदि एक काम नहीं होगा, साधना भक्ति नहीं होगी, तो प्रचार के नाम पर भगवान जाने क्या होगा. और हमने देखे हैं, हम बैठ करके काक भूषणी के समान वही देखते आ रहे हैं इतना दिन से. बहुत स्टार आते हैं और जाते हैं. साधना भक्ति पक्की रहेगी, सब कुछ स्मूथ चलेगा. साधना भक्ति में गड़बड़ हुआ, पैर फिसला, तो माया का करंट बहुत स्ट्रांग है, ऐसे बहा कर ले जाएगी, ऐसे बहा कर ले जाएगी कि कुछ भी बचेगा नहीं, कहीं का नहीं रह जाएंगे. तो प्लीज बी कोऑपरेटिव. प्रभुपाद सेड, योर लव फॉर मी विल बी सीन हाउ यू कोऑपरेट विथ ईच अदर. कम टू संध्या आरती. ये चैतन्य महाप्रभु के प्रसन्नता के लिए संध्या आरती, गौर आरती कहते हैं. संध्या आरती नहीं, गौर आरती, महाप्रभु का आरती है. निताई करुणा होवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, सबसे स्वीटेस्ट आरती है संध्या आरती. जब गाते हैं कि वो जग जाए तो स्पेशल आनंद आता है. तो आप लोग सब लोग आओ संध्या आरती में, नाचो गाओ उद्दान नाचो, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन नाचो. जैसे कोई डांस करता है, हेमा मालिनी डांस करती है, तो उनको ऑडियंस को प्रसन्न करना है,
तो एक नियम से नाचती है, उल्टा पुल्टा नाचेंगे तो लोग ताली पड़ाए भाग चले जाएंगे, लेकिन भक्त लोग आनंद में रहते हैं, नाचो, जंप अप एंड डाउन, नो प्रॉब्लम, डांस एंड चैंट, उद्गायते नर्तते च मद्भक्त युक्त भुवना पुनाती, उद्गायते उच्च स्वर से गाओ, नर्तते च और नाचो, सबको पवित्र कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। नो टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर टुडे, वी हैव गॉन ओवर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।